समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शिफाली।
हेलो आकर्षिता, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर डियर लिसनर्स। You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. And for you, we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, business, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. President Draupadi Murmu visits Siachen base camp in Ladakh and interacts with soldiers and officers.
हरियाणा में एक चरण और जम्मू कश्मीर में तीसरे तथा अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रैलियों और रोड शो कर रहे हैं।
इंडियन एम्बेसी इन बेरूत इश्यूज एडवाइजरी टू इंडियन नेशनल्स टू लीव लेबनन और नॉट टू ट्रैवल देयर अमिड एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड हिजबुल्ला।
अमरीका, फ्रांस और उनके कुछ सहयोगी देशों ने इसराइल लेबनान सीमा पर 21 दिनों के तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरैक्ट्स विद फीडे चेस ओलंपियाड चैंपियंस एट हिज रेजिडेंस। And now, dear listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we'll talk about World Maritime Day, International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons, and World Environmental Health Day. So, Akarshita, we have quite a handful. Aaj kafi saare important days hai.
Jee, jee.
And un sab ke baare mein baat karna banta hai. So, first, let's talk about World Maritime Day. The special day is organized by the International Maritime Organization, IMO, to highlight the importance of maritime activities and the contributions of the maritime industry to global development.
ये दिन विश्व की व्यावसायिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के महत्व पर केंद्रित है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के काम के एक विशेष पहलू पर जोर देता है। साथ ही साथ ये दिन समुद्र में कार्य करने वाले प्रत्येक समुद्री अधिकारी, सर्विस एजेंट और नाविक को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है।
जी, और लेट्स हैव अ लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ दिस वर्ड। द टर्म मैरिटाइम इटसेल्फ ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स बैक टू द लैटिन वर्ड मैरिटिमस, व्हिच मींस ऑफ द सी। दिस डे हेल्प्स इन शेडिंग लाइट ऑन द इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय मैरिटाइम ऑफिसर्स, सर्विस एजेंट्स एंड सीफेयरर्स टू आवर डेली लाइव्स।
ये दिन पहली बार 1978 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ कन्वेंशन के लागू होने की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, जहाजरानी गतिविधियों के कारण होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकना और हरित जहाजरानी को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान देना है।
जी, एंड नाउ वी'd लाइक टू टेल आवर लिसनर्स दैट ईच ईयर द आईएमओ सिलेक्ट्स अ डिफरेंट थीम दैट रिफ्लेक्ट्स करंट इश्यूज एंड प्रायोरिटीज विद इन द मैरिटाइम इंडस्ट्री, aiming to foster discussion and inspire action. This year's theme is Navigating the Future, Safety First. It reflects the IMO's work to enhance maritime safety and security in tandem with the protection of the marine environment whilst ensuring its regulatory development process safely anticipates the fast pace of technological change and innovation.
ये विषय नई और अनुकूलित प्रौद्योगिकियों और जहाजों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उपायों सहित वैकल्पिक ईंधन की शुरुआत से उत्पन्न सुरक्षा नियामक निहितार्थों की पूरी श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। और शिफाली, अगर हम बात करें अपने ट्रांसपोर्टेशन की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे या रोड ट्रांसपोर्ट या ऐसी ही ट्रांसपोर्ट है, हवाई मार्ग ही जो है प्रदूषण फैलाते हैं, जहाज भी हैं हमारे जो वैकल्पिक अब हम देख रहे हैं कि वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जितना हम हो सके ग्रीन हाउस गैसेस का जो है
ग्रीन एनर्जी,
हाँ जी, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को अगर हमें कम करना है तो कहीं ना कहीं हमें हरित ऊर्जा की तरफ जाना ही पड़ेगा, और ये विषय इस पे केंद्रित भी करता है इस विषय को.
ट्रू, द फोकस इज टू वर्क विद सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फ्यूल्स. Also, dear listeners, international shipping transports more than 80% of global trade to peoples and communities all over the world. Shipping is the most efficient and cost-effective method of international transportation for most goods. It provides a dependable, low-cost means of transporting goods globally, facilitating commerce and helping to create prosperity among nations and peoples.
और शिपाली दुनिया एक सुरक्षित, संरक्षित और कुशल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग पर निर्भर करती है.
True.
जो भविष्य में टिकाऊ तरीके से हरित आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो राजमार्ग है
जी.
उसका जैसे दो नेशंस को, दो देशों को जो कनेक्टिविटी है उसकी, वो हम देखते हैं कि जल मार्ग से ज्यादा होती है. मतलब वो हमारे जो रूट्स हैं, जो रास्ते हैं, उसको कितना कम कर देता है और कितना आसान बना देता है. तो कहीं ना कहीं हमें हरित आर्थिक विकास के लिए जो है हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे ऐसे प्रयोग करें जिससे हम उन पे डिपेंडेंट ना हों.
जी. Also, lastly, a pact has been signed which is known as the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement. It has been signed by our External Affairs Minister S. Jaishankar. This agreement is aimed at ensuring that marine life is conserved and used in a sustainable manner on the high seas, which is beyond nations' territorial waters and the exclusive economic zone. Could extend up to 370 kilometers from the shores, which constitute about 2/3 of all the oceans.
जी हाँ, समुद्री कानून संधि के तहत समझौता ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि समुद्री जीवन को उच्च समुद्र पर एक स्थायी तरीके से संरक्षित और उपयोग किया जाए, जो राष्ट्रों के क्षेत्रीय जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे है, जो तट से 200 समुद्री मील या 370 किलोमीटर तक फैल सकता है. और एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा है कि भारत को बीबीएनजे समझौते में शामिल होने पर गर्व है, जो ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि महासागर स्वस्थ और लचीले बने रहें.
जी. So basically a lot of work is being done towards maritime work and efficient maritime work. And now, dear listeners, we'll be moving over to our next topic of discussion for today, which is International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons.
निःशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी. ये कथन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शिफाली. और कहीं न कहीं आज हम देखें तो ये इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हम क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज कितने कई अन्य देश हैं जो एक दूसरे से लगातार युद्ध कर रहे हैं, और ये समस्या बनी हुई है कि कभी भी परमाणु हमले किए जा सकते हैं.
जी.
और परमाणु हथियारों का खतरा इंसानी जीवन के लिए और संसार के सभी जीव के लिए बेहद हानिकारक है.
yes.
इस वजह से परमाणु हथियारों का उन्मूलन होना बेहद जरूरी है, और बढ़ते भू राजनीतिक विभाजन और अविश्वास तनाव को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं. और परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति के बजाय एक और परमाणु हथियारों की होड़ आकार ले रही है. तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये पूरी मानवता के लिए एक संकट खड़ा कर देगा. जैसा कि हमने देखा यह शिपाली हिरोशिमा नागासाकी में कि किस तरीके से आज भी उनकी जो वो बम धमाका था, वो आज भी उन लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है.
True. It doesn't just impact one generation, but throughout multiple generations.
Right.
So its impact is felt even today. So that's why, dear listeners, on this important day, the world must deliver a clear and united message. The only way to eliminate the nuclear threat is to eliminate nuclear weapons. In 2013, the United Nations General Assembly, UNGA, took a significant step towards global nuclear disarmament by declaring September 26, that is today, as the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons, also known as Nuclear Abolition Day. This declaration was formalized through a UNGA resolution.
और श्रोताओं, आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी है। इसका उद्देश्य पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करना है और ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि एक स्वस्थ पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोग प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में समझते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के तकनीकी रूप से उन्नत क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया है। ये परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एक रिपोर्ट।
हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा पहली दो ऐसी परियोजनाओं सिरमौर जिला की 1630 मेगावाट की रेणुकाजी पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिला के ब्यास बेसिन में 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करेंगी क्योंकि इनमें टर्बाइनों के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए संग्रहित पानी से बिजली का उत्पादन करके निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। दोनों परियोजनाओं पर काम पहले से ही चल रहा है। इसके लिए दो अलग अलग पावर हाउस स्थापित किए गए हैं जिसमें से एक पावर हाउस नियमित बिजली उत्पादन के लिए और दूसरा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रणाली के लिए समर्पित है। रेणुकाजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 40 मेगावाट होगी जबकि थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना 191 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती नीति 2021 पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को प्राथमिकता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत चिन्हित की गई पीएसपी के लिए प्रस्ताव पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ हर 6 महीने में आमंत्रित किए जाएंगे। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के ये प्रयास हाइड्रो परियोजनाओं के माध्यम से राजस्व बढ़ाने और हिमाचल प्रदेश को एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में सार्थक साबित होंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं प्रभा शर्मा।
The Union Ministry of Electronics and Information Technology and the Bengaluru-based private cyber security solution company SISA have partnered to introduce an artificial intelligence program for the cyber security professionals. The Indian Computer Emergency Response Team, CERT-IN, that works under the ministry has partnered with SISA to introduce this ANAB accredited AI security certification program in Bengaluru. More from our correspondent.
The Artificial Intelligence Program or AI program for cyber security professionals was launched in Bengaluru last week. The program equips security professionals with the skills needed to effectively integrate artificial intelligence into business applications while adhering to sustainable practices. Speaking exclusively to Akashvani News in Bengaluru, the Director General of Indian Computer Emergency Response Team, Dr. Sanjay Bhal, has emphasized on the importance of starting the program in public partnership.
From an AI perspective, when you have certified professionals coming out after this certification, they undergo, they will be able to contribute much, much more comprehensively and securely to whatever systems are being designed, developed across the globe. So whether you take healthcare, whether you take finance, whether you take transportation, any sector, okay, applications across sectors. I think this program is open for all people who are coming out from universities as well as who are already working in the field. Come forward, take this certification, understand the issues and challenges which AI will bring forward, and how do you start building algorithms from trust perspective, secure perspective, and privacy perspective. As you've seen, a whole lot of things have changed with AI coming in. The models have changed, the attack vectors have changed, the malicious actors, their method of attacking, etc. has changed. So you need different skill sets, and this is what this program is filling the gap.
This program is perfectly attuned to rapidly evolving threat landscape of AI in cyber security. Sudhindra reporting for Parikrama. From Bengaluru.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने देश की रेलवे सेवा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है भुज और अहमदाबाद के बीच शुरू की गई देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल। ये ट्रेन भुज से अहमदाबाद तक की 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। सुनते हैं हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट और जानते हैं कि कैसा है इस ट्रेन से सफर करने का अनुभव।
भारत के पहले नमो भारत रैपिड रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाई। नमो भारत रैपिड रेल की अधिकतम गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे यात्रियों का काफी समय बचता है। ट्रेन की सीटों को अत्याधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया है और ट्रेन ढाल जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है। आकाशवाणी से बात करते हुए रेलवे अधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन भूज से अहमदाबाद तक चलेगी और इस ट्रेन में कुल 11 स्टेशन है। चाहे वो ऑफिस जाने वाले हो या फैक्ट्री कर्मचारी या किसी भी कारण से दैनिक यात्री हो, यह ट्रेन नियमित रूप से यात्रा करने वाले अनारक्षित इंटरसिटी यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सुनते हैं कच्छ के नागरिक निखिल शाह और वैशाली सोनी इस ट्रेन के बारे में क्या कहते हैं।
मैं ना अभी बहुत खुश हूँ, अभी गुजरात में और ऑल ओवर इंडिया की पहली ट्रेन स्टार्ट हुई है, नमो वंदे भारत ट्रेन, जो कि हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है और उसके लिए हम सिर्फ 5 आवर्स और 45 मिनट में हम अहमदाबाद पहुंच सकते हैं।
इसका टिकट है 500 रूपये के अंदर ही है और जनरली क्या है कि यहां से भुज से 40-50 बस जा रही है, स्लीपिंग कोच जा रही है, वो 1000 रूपया लेती है, इसकी जगह ये 500 रूपया लेती है। ठीक है, तो सुबह जाना है, सुबह 5 बजे जाएंगे, 11 बजे पहुंच जाते हैं, तो जो व्यापारी लोग हैं उसको दोपहर का पूरा काम पूरा दिन मिलता है।
इस ट्रेन में यात्रियों के लिए भोजन सेवा भी उपलब्ध है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस ट्रेन में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया गया है। नमो भारत रैपिड ट्रेन को 150 किलोमीटर के दायरे में शहरों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यात्रियों का कच्छ से अहमदाबाद तक का सफर तेज और आरामदायक होगा। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंड।
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember one of the towering figures of India's Renaissance in the 19th century, Ishwar Chandra Vidyasagar, who was born on this day in 1820. Through his multiple contributions to people and society, Ishwar Chandra left an indelible mark in the annals of Indian history.
He was a great social reformer, anti-colonial activist and philanthropist. A great educator and author, Vidyasagar is considered as the father of Bengali prose. He significantly rationalized, simplified and modernized the Bengali alphabet using woodcut type.
Born at Birshingo village, now a part of Midnapur district, Vidyasagar was a brilliant student from childhood. His quest for knowledge was so intense that he used to study under a street light, as it was not possible for his family to afford a gas lamp at home. He cleared all the examinations with excellence and in quick succession.
In 1839, Ishwar Chandra Vidyasagar cleared the Sanskrit law examination and joined Fort William College of Kolkata as head of the Sanskrit department. Later, he became principal of the same college. He excelled so well in his undergraduate studies of Sanskrit and philosophy that his college gave him the honorific title Vidyasagar, Ocean of Knowledge.
Vidyasagar championed the upliftment of the status of women, especially widows in Bengal. He was particularly moved by the plight of child widows who were often ill-treated and tortured. Vidyasagar also fought against the system of polygamy. Despite strong opposition of the then society, he ran a revolutionary agitation for women's education and rights to remarriage for leading a normal life.
He petitioned the Legislative Council for Hindu widow remarriage despite severe opposition and a counter-application by Dharma Sabha, which had nearly 4 times as many signatures. Finally, Lord Dalhousie personally finalized the bill and Hindu Widow Remarriage Act 1856 was passed.
He was made the Special Inspector of Schools in 1855. He travelled around Bengal and visited schools. During his travels, he witnessed the pathetic conditions in which people lived. Superstitions and blind faith were prevalent due to lack of education. This motivated him to establish schools all over Bengal to spread the light of education. Within 2 months, he arranged for 20 schools to be built. In order to encourage gender equality, he also established 30 schools exclusively for girls.
তোমার কাছে সবাই নিলাম জীবন গড়ার দীক্ষা বিদ্যার সাগর তুমি কান্নার ঈশ্বর।
In 1873, Vidyasagar came to Karmatar, a sleepy hamlet now in Jamtara district of Jharkhand and spent more than 18 years of his life there. He set up a girls' school and a night school for adults on the premises of his house, which he called Nandan Kanan. He also opened a free homeopathy clinic to provide some medical care to these unprivileged tribal people.
Nandan Kanan was later sold. However, the Bengali Association in Bihar in 1974 purchased it from money collected by house-to-house contributions of 1 rupee each. The girls' school has been restarted, named after Vidyasagar. The free homeopathy clinic is still serving the local population. The house of Vidyasagar has been maintained in its original shape.
The government of Jharkhand on 26 September 2019 named Karmatar block as Ishwar Chandra Vidyasagar block as a mark of respect on the birth anniversary of the great social reformer. Indian Post issued stamps featuring Vidyasagar in 1970 and 1998.
The great social reformer Ishwar Chandra Vidyasagar passed away in Kolkata on the 29th of July, 1891. In the words of one of the greatest Bengali poets, Michael Madhusudan Datta, Vidyasagar has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother. We salute this great Indian.
And in business news today, domestic benchmark indices Sensex and Nifty extended their winning streak before ending today's session at new closing highs. The BSE Sensex achieved a new all-time high of 85,930 in the intraday and surged 666 points or 0.7% before settling at a new closing peak of 85,836. Meanwhile, the Nifty 50 reached a record high of 26,250 during the session before ending at 26,260. With an uptick of 0.8% or 211 points.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर भारतीय शतरंज ओलंपियाड टीम के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश सभी क्षेत्रों में उन्नति हासिल करने से विकसित देश बनता है।
कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है तो उसके पास कितने पैसे हैं कितने उद्योग हैं जीडीपी कितना इतने से नहीं बनता है हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल हमारे बच्चे कैसे लाएं ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल तब देश महान बनता है
श्री मोदी ने 45वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड की विजेता भारतीय टीम के सदस्यों के बीच शतरंज की एक बाजी भी देखी भारत ने हंगरी के ब्यूडापेस्ट में आयोजित 2024 शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचते हुए महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद ने शतरंज सहित कई विषयों की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की बैठक के बाद शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और खेल के प्रति उनके जुनून से प्रेरित हैं
And in badminton, India's Kidambi Srikanth advanced into the men's singles quarterfinal of Macau Open today. Srikanth defeated compatriot Ayush Shetty 21-13, 21-18 in the pre-quarterfinal. In the women's doubles, India's third seed pair of Gayatri Gopichand and Teresa Jolly are playing against Taiwan's Lin Shi-chun and Teng Chun-sun in a round of 16 match. Meanwhile, in women's singles, Indian shuttler Tasneem Mir went down 17-21, 21-13, 10-21. Against the fourth seed Tomoka Miyazaki of Japan in a pre-quarterfinal match.
और श्रोताओं अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस आज हिंदी फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार मुखोपाध्याय की पुण्यतिथि है वे हेमंत दा के नाम से प्रसिद्ध थे जिनके गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं 1991 में फिल्मिस्टीन स्टूडियो के बैनर तले बनने वाली अपनी पहली हिंदी फिल्म आनंद मठ के लिए हेमेन गुप्ता ने हेमंत कुमार से संगीत देने की पेशकश की। आनंद मठ में लता मंगेशकर की आवाज में गाया हुआ वंदे मातरम आज भी श्रोताओं को जोश से भर देता है। इस बीच एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में जाल, हाउस नंबर 44 और 16वां साल जैसी फिल्मों के लिए भी हेमंत कुमार ने जो गाने गाए श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए। 1954 में उनके संगीत से सजी फिल्म नागिन ने अपार सफलता प्राप्त की। उन्होंने बंगला फिल्म नील आके शेर नीचे का निर्माण भी किया, जिसे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया। इसके साथ ही फिल्म नागिन के लिए हेमंत कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
करके हमें यूं न जाइए, आप तो हमारे कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं। चोरी चोरी आके शोक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। याद किया दिल ने कहां हो तुम, घूमती बहार है कहां हो तुम,
अरे पुकार लो जहां।
Also, dear listeners, today is the death anniversary of Uday Shankar, an Indian dancer and choreographer who was a pioneer of modern dance in India. He's best known for creating a fusion style of dance, adapting European theatrical techniques to Indian classical dance, imbued with elements of Indian classical, folk and tribal dance. He was awarded the Sangeet Natak Akademi Fellowship for Lifetime Achievement, as well as the Padma Vibhushan. You're listening to a dance track from one of his movies, Kalpana.
आज भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के प्रसिद्ध अभिनेता देवानंद की जयंती है। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था। वे अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता निर्देशक भी थे। वे बॉलीवुड में देव साहब के नाम से एक जिंदा दिल इंसान के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म जिद्दी में अभिनेत्री कामिनी कौशल के साथ देवानंद के फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और सन 1949 में उन्होंने नव केतन बैनर नाम से स्वयं की फिल्म निर्माण संस्था खोली। वर्ष 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देवानंद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और इसके बाद वर्ष 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का भी निर्देशन किया, जिसमें दम मारो दम गीत ने धूम मचा दी। उन्हें दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। अब हो तुम या कोई हकीकत कौन, हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों।
Also, dear listeners, today is the birth anniversary of Olivia Newton-John, who is a best-selling British and Australian singer and actress. She was a four-time Grammy Award winner. In 1978, Newton-John starred in the musical film Grease, which was the highest-grossing musical film at the time and whose soundtrack remains one of the world's best-selling albums. Let's listen to one of her hits, If You Love Me, Let Me Know.
love me, let me know. If you don't, then let me go.
Why?
I can't take another minute of the day without you in it. If you love me, let it be. If you don't, then set me free. Take the chain.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शिफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार,
नमस्कार।